ಭವಬೀಜಾಂಕುರುಜನನಾ ರಾಗಾದ್ಯಾಕ್ಷಯಮುಪಾವತಾಯಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ ಹರೋಜಿನೋ ವಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುಧೀ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುಧೀ ಗುರು ಹೇ ಹಿತೇಶೀ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೇ ನಿರತ್ ನಿತ್ಯ ಹಿತೋಪದೇಶೀ ವೇ ಪಾಪ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಮೇ ಜಲ ಹೇ ಸಯಾನಿ ಪೂಜೂನೆ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನೆ ಪೂಜೂನೆ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನೆ. ಬಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂದುಕುಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ,
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷಮ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಶ್ರೀ ಭವ್ಯ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್
हम सभी लोग पिछले कई दिनों से अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं इस बारे में बहुत विचार कर चुके हैं. अब तो ऐसा है कि जो क्षण और शेष रहे हैं उनमें भी हमें जो हमने विचार किया है उसका अभ्यास कर लेना चाहिए, तो शायद हमारे उन विचारों की सार्थकता होगी. जीवन को अच्छा बनाना सब चाहते हैं, कोई अपने जीवन को बुरा नहीं बनाना चाहता, लेकिन हमारे अपने पुराने संस्कारों की वजह से, हमारे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ की कमी की वजह से और हमारे आसपास के वातावरण की वजह से हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता है. पर ऐसा सोच करके कि हम तो अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, वो तो अच्छा बन ही नहीं सकता, हम यदि बैठ जाएं तो वो भी ठीक नहीं है. हमें प्रयत्न तो अपनी तरफ से करना ही चाहिए और हमने पिछले दिनों इस तरह का प्रयत्न किया भी है. बस इतना और शेष रहा है कि हम देखें कि जो हमने प्रयत्न किया है उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम हमारे जीवन में कितने दिखाई दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं. अगर कोई पूरे चतुर्मास, पूरे वर्षा योग के बारे में कोई पूछे कि हमने पिछले दिनों क्या प्रयास किया, तो क्या आप कह पाएंगे कि हमने ये प्रयास किया और हम इस प्रयास में सफल हुए? वरना ऐसे ऐसे चार चार माह कई बार हम बिता चुके होंगे अपने जीवन में, जिन्होंने अपने जीवन के 70 और 80 वर्ष बिताए हैं उनके जीवन में कितने बार ये चार चार माह गुजरे होंगे. कोई भी दिन और कोई भी रात तब सार्थक होती है जब हम अपने उन दिन और रातों को अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए व्यतीत करते हैं। तो हमने पिछले दिनों यही सीखा है कि जितना बने हमें अपने जीवन को निर्मल बनाना है, और निर्मलता आती कैसे है और मलिनता के कारण क्या है, इन पर भी हमने विचार किया है। जितनी जितनी हमारी कषाय बंद होती चली जाती है उतने उतने हमारे भीतर परिणामों में निर्मलता आती चली जाती है। जिसकी जितनी कषाय मंद है वो उतना अधिक निर्मल है। और आत्मनः विशुद्धि प्रसादो, जितनी जितनी हमारे भीतर प्रसाद गुण की बढ़ती होती चली जाती है उतनी विशुद्धि हमारे जीवन में आती जाती है। वो प्रसाद क्या चीज है, अपन कहते हैं ना कि हमें भगवान का प्रसाद मिल गया है, या हमें कुछ थोड़ा सा आपका प्रसाद मिल जाए, वो प्रसाद क्या है? वो मन की प्रसन्नता है, वो कषायों की मंदता ही प्रसाद है। तो हमने पिछले दिनों यही प्रयत्न किया है। हम थोड़ा सा अपने आसपास देखें कि आज चारों तरफ जो हमने संसार अपना निर्मित किए हैं, एक तो ये जो दिखाई पड़ता है वो संसार है, पर हमने अपने चारों तरफ जो संसार निर्मित किए हैं, हमने अपने भीतर जो संसार निर्मित किए हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है मेरा अपना राग और द्वेष। ये दोनों ही चीजों से मैं अपना संसार बना लेता हूं और अपने जीवन को निरंतर मलिन करते चला जाता हूं। राग द्वेष मेरे जीवन को मलिन करते हैं, ये हम सुनते जरूर है, लेकिन जब हम राग द्वेष करते हैं इसके अलावा तो मलिनता से
नहीं करता होगा। बहुत थोड़े क्षण होंगे जब हम राग द्वेष ना करते हो, बुद्धिपूर्वक हमारे अंदर होता रहता है ऑटोमेटिकली, हमारे अपने कर्म के उदय से, पर हमारा उस पर कोई वश नहीं चल पाता है, या कि हम अपने पुरुषार्थ को जागृत करके उस पर अपना कोई ग्रिप नहीं बना पाते हैं और उस राग द्वेष को कम नहीं कर पाते। अपने और पराये के एक चक्र में सुबह से शाम तक और रात भी उसी में गुजर जाती है। इस संसार को थोड़ा सा गौर से देखें कि ये जो मैंने संसार निर्मित किया है जिसमें मैं अपना और पराया ये दिन भर यही करता रहता हूं, इस संसार में रह करके भी मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकता हूं, इस संसार की वास्तविकता क्या है, ये कितना झूठा है और कितना सच्चा है, कितना इसमें सार है और कितना इसमें असार भूत भी है, इतना भी हमारे जीवन में अगर ध्यान में आ जाए। क्या हुआ था एक बार, इससे जल्दी समझ में आएगा कि हमारा जो संसार हमने निर्मित किया है कितना फॉल्स है, कितना कितनी व्यर्थताओं पर टिका हुआ है, जिनको हम जानते हैं मानते भी हैं लेकिन हम उनसे बच नहीं पाते हैं और उसी पर अपने उस संसार को बनाए रखते हैं, उसी में से सुख महसूस करते हैं, उसी में से कभी दुख महसूस करने लगते हैं। एक बार ऐसा अनाउंस हुआ कि बादशाह अकबर नर्मदा के दर्शन करने जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई। सब सचेत हो गए, नर्मदा के दर्शन करने जा रहे हैं तो आसपास जो भी दर्शन कराने वाले पुरोहित थे उन सब में आपस में चर्चा होने लगी किसको किसको ये सौभाग्य मिलेगा कि वो दर्शन कराएंगे। पहुंचे बादशाह दर्शन करने के लिए नर्मदा के किनारे तो सबने आगे बढ़ करके और हाथ हाथ उनको लिया कि पता नहीं किस पे कृपा होती है, और उसमें से किसी एक पुरोहित को चुन लिया गया, बाकी सब खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर तक वो सोच रहे थे कि शायद हमें चुनेंगे, लेकिन जब एक को चुन लिया तो अब कोई विकल्प शेष नहीं रहा, सब हाथ बांधे खड़े हैं। अब वो पुरोहित बहुत खुश है कि मुझे ये सौभाग्य मिलने वाला है, और दर्शन करवाता है, जो क्रिया होती है उसके किनारे वो सारी क्रिया संपन्न होती। अब लोग ये देखने खड़े हैं कि इसके बाद राजा उसको कौन सा पुरस्कार देगा। ये तो बहुत बेशकीमती चीज उसको आज मिलने वाली है। एक तो ये सौभाग्य मिला कि राजा ने उससे चुना, और दूसरा अब ये कि वो तो मालामाल हो ही जाना है। हमने इस बात पे कई बार चर्चा की है कि हमारे गुण किसी दूसरे के गुण के बढ़ जाने से घटते नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि हमारे गुण घट गए हैं। किसी दूसरे के गुणों को बढ़ते देख करके हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम कम पड़ गए हैं। क्यों नहीं ऐसा लगता है कि वैसे ही गुण मैं अपने भीतर भी प्रकट करूंगा, अभी तो पहले जाकर के उसके इन गुणों के लिए उसकी पीठ थपथपाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा भाव ही नहीं आता। हम और कौन से निर्मल भावों की बात करें, यही तो निर्मलता है भावों की। अगर ऐसा भाव आने लगे तो समझना कि हमने 4 महीने जो विचार किया है वो जीवन में घटित हो गया है। और इतने नहीं, हमारी संपत्ति में से एक टुकड़ा भी कम नहीं होता है, लेकिन दूसरे की संपत्ति देखकर अपनी संपत्ति व्यर्थ मालूम पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? सबको यही लग रहा है कि सबके पास सब है, उन पुरोहितों के पास, उनका राजा ने कुछ नहीं छीना है, पर अब उस एक पुरोहित को जो दिया जा रहा है उसकी वजह से सारे के मन में बहुत बहुत मुश्किल है। किसी को पाते देख करके भी और हमें ऐसा लगता जैसे हमारा छिन गया हो कुछ। बताइए इसको क्या कहेंगे? आश्चर्य है, किसी के गुण बढ़ते देखकर हमें लगता है कि जैसे हम अवगुणी हो गए। किसी को पाते देखकर हमें लगता जैसे हमारा कुछ छिन गया हो। संसार इन्हीं परिणामों से हमारे निर्मित हमने खुद अपने लिए किया है और किसी ने नहीं किया है। जिस दिन हम अपने इन परिणामों को संभाल लेंगे उस दिन संसार में सब कुछ सारभूत है, और वरना तो इस संसार से असार और कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि इस संसार में इसी तरह की असारता के भाव हमारे भीतर हमेशा उठते रहते हैं। और राजा ने भी पुरोहित के साथ बहुत मजा बड़ा मजाक किया। मालूम क्या दिया? एक फूटी कानी कौड़ी। लेकिन ध्यान रखना, देने वाला भले ही कुछ दे, लेकिन अगर पाने वाले के मन में उमंग है, उत्साह है, तो वो उस खोटी चीज को भी बहुत बड़ी बना लेगा। इस संसार में ऐसे ही ध्यान रखना, यहां पाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन जिसके अंदर पाने की क्षमता है वो इस संसार में से भी, इस कीचड़ के बीच में से भी कमल पा लेता है। उसने ऐसे लपका, लोग तो देख रहे हैं कि क्या दिया क्या दिया, और इतने अहोभाव से उसने लिया कि लोगों को यही लगा कि जैसे कोई हीरा ही दे दिया हो। कोई नहीं देख पाया कि कानी कौड़ी दी थी। राजा को मालूम है और प्रोहित को मालूम है कि दी तो कानी कौड़ी है, लेकिन ली ऐसे है लोगों के बीच जैसे कि हीरा, और जैसे गांठ में गठिया के रख लिया हो, बिल्कुल वैसे ही लपक करके और रख लिया। अरे वाह! और मालूम फिर क्या कहा? अहो भाग मेरा, कई पीढ़ियां गुजर जाए तब भी आपकी दी हुई चीज खर्च नहीं कर पाऊंगा। क्या चीज दी है? बेशकीमती चीज दी है। अब तो लोग आसपास के और मुश्किल में पड़ गए। इस संसार में भी ऐसा ही है, दूसरे को कुछ व्यर्थ पाते देखकर भी ऐसा लगता है जैसे सारा सार्थक उसी के पास। कितना व्यर्थ हम अपने घर में जितना जितना इकट्ठा करके रख लेते हैं, दूसरे को देख करके यही लगता है कि जीवन तो इसका सार्थक है, देखो तो क्या क्या है इसके पास। जबकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है। जो जिसके पास है वो भी जानता है कि लाद करके छाती पर मरते समय नहीं ले जा पाऊंगा एक भी चीज, खर्च भी नहीं कर पाऊंगा। यही तो है संसार की वास्तविकता, लेकिन इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। कैसा है हमारा ये संसार जो हमने निर्मित किया, थोड़ा सा इस पे विचार कर रहे हैं। और वापस लौट जाता है, लेकिन अब राजा शक्ति में आ जाता है। बड़ा मुश्किल है, देने वाले को भी एक बार भ्रम हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे से वाकई हीरा ले लिया हो, क्योंकि लेने वाले ने तो हीरे की तरह लिया। बड़ा मुश्किल, ऐसे लिया जैसे कि कोई हीरा लेता है। तो राजा को भी एक बार थोड़ा सा तो लगा, फिर उसने कहा नहीं नहीं वो कॉन्फिडेंट हूं मैं अपने आप में, मैंने दी तो कौड़ी फूटी कौड़ी ही दी है। वापिस लौट गया, लेकिन सब तरफ से दरबार में खबरें रोज रोज सुनाई पड़ने लगी कि साहब क्या दिया है, राजा ने तो माला माल कर दिया। जिसको देखो वो कह रहा है, जो पूछता है उस पुरोहित से कि क्या दिया, तो कहता कि पीढ़ी पीढ़ी नहीं खा पाएंगे, वो दिया है, खर्च नहीं हो सकता, इतना दिया। अब उसके मायने कौन जाने कि कैसे खर्च नहीं होगा। अब राजा भी एक बार मुश्किल में पड़ गया, जब इतने दिन से लगातार महीने भर हो गया सुन रहा है, तो उसने कहा सुनो पुरोहित को बुलाओ। पुरोहित तो चाहता यही था कि बुलाया जाएगा, और जब पुरोहित को बुलाया गया तो राजा ने कहा कि देखो तो देने को हम क्या देते हैं, लेकिन अगर पाने वाला अहोभाव से पाले तो हमें अपना दिया हुआ बड़ा मालूम पड़ने लगता है, हमें खुद भ्रम होने लगता है। राजा को भी भ्रम हो गया कि कहीं धोखे से मैंने हीरा तो नहीं दे दिया। पूछता है वो कि पुरोहित जी मैंने उस दिन आपको जो दिया था जानते हैं वो क्या था। फौरन उसने हाथ जोड़े और साष्टांग हो गया कि क्या दिया था भगवान, मेरे से ही पूछ रहे हैं, अहो भाग मेरे, आप जैसे मैंने बहुत लोगों बहुत बड़े बड़े दानी देखे हैं हमने, लेकिन आप जैसा दानी तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो बेशकीमती चीज आपने दी है कि अद्भुत, मैं तो अभी तक जो है आपके उस एहसान से दवा हुआ। अब तो राजा बहुत मुश्किल में पड़ा कि हो ना हो मामला कुछ गड़बड़। उसने कहा पुरोहित जी अकेले में अकेले मिलना चाहता हूं। उसने कहा जरूर। सब दरबार खाली कर दिया, फिर धीरे से पूछा कि क्या दिया था। कहते जो दिया था वही दिया था, कानी कौड़ी, लेकिन राजन पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया मैंने उस कानी कौड़ी पर भी, ये ध्यान रखना, उतर के नीचे आना पड़ा आपको। ये पाने वाले के ऊपर इस संसार में निर्भर करता है कि तमाम असारता और भ्रम के बावजूद भी हम इस संसार में क्या हासिल करते हैं, किस अहोभाव से जो प्राप्त हुआ है उसमें हम कितने संतुष्ट हैं। वरना तो यहां पर कुछ भी नहीं है। आचार्य श्री कभी कभी कहते हैं कि हम तो ऐसा है जैसे किसी कबाड़ी की दुकान में आके खड़े हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखना इस कबाड़ी की दुकान में भी कोई चीज बहुत पुरानी और बहुत बेहतरीन मिल सकती है, लेकिन आंख हमारी अगर उसको पाने की हो, अगर हमारे पास दृष्टि है इस संसार में, वो जो सारभूत है उसको पाने की दृष्टि है, तो कोई वजह नहीं है। वरना महापुरुष भी यहीं इस असार संसार में हुए हैं, उन्होंने भी तो यहां से कुछ हासिल किया है, पा लिया। और हम क्यों खो देते हैं? इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम उन चीजों की तासीर नहीं समझ पाते, उन चीजों की वास्तविकता नहीं समझ पाते हैं, और हमारे जो हम पाते हैं उसमें हमेशा असंतुष्ट बने रहते हैं। संसार के बारे में अगर विचार करना हो तो जीवन मृत्यु और जीवन और मृत्यु के बीच प्रेम और घृणा, बस इतना ही है संसार और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा गौर से सोचना, जन्म मरण और उनके बीच में राग द्वेष कह लो, अपना पराया कह लो, प्रेम और घृणा कह लो, जो कहना हो वो कह लो, इसके अलावा कुछ है क्या? लेकिन जीना किस प्रकार से है ये हम पर निर्भर है, मरना कैसे है ये हम पर निर्भर है, और इस बीच में घृणा करनी है कि प्रेम का विस्तार करना है, ये भी सब हमारे ऊपर निर्भर है। अब देख ले हम कि हमें किस तरह जीना है और किस तरह हम जी रहे हैं, किस तरह जीना हम पसंद करते हैं। हम लोगों की पसंद तो बहुत प्यारी होती है, लेकिन उसको हासिल करने के प्रयत्न उतने प्रबल नहीं होते। हाँ, हम चाहते तो बहुत अच्छे से अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अच्छा प्रयत्न भी करना चाहिए। इस तरह की ललक हमारे भीतर नहीं होती। हम समझ लें कि हमें कैसे जीना है, हम जैसे जी रहे हैं वो भी हमारी अपनी चॉइस है, और हमने अगर उससे बेहतर जीना सोचा है तो उसके लिए हमें जो प्रयत्न करना है वो प्रयत्न भी हमें करना चाहिए। एक युवक ने पूछा था एक साधु जी से कि महाराज मुझे कोई शिक्षा दें, मैं अपने जीवन में कैसा जीवन जीऊं। तो उन्होंने कहा सुनो मेरे साथ आओ, तुम खुद डिसाइड कर लेना तुम्हें कैसा जीवन जीना है। दो ही प्रकार का जीवन है, एक गृहस्थ का जीवन है और एक साधु का जीवन है, उसमें से जो तुम्हें जीना हो। लेकिन मैं बता देता हूं कि किस तरह जीना, अगर दोनों जीना है तो किस तरह जीना। और ले जाता है वो उस युवक के अपने साथ में, एक घर के सामने रुक जाता है, वहां पर एक गृहस्थ बाहर बैठा हुआ और तकली से सूत कात रहा है। दिन के 12 बजे हैं, इतनी रोशनी है, धूप खिली हुई है, तकली से सूत कात रहा है। और जैसे ही ये साधु जी पहुंचते हैं तो साधु जी थोड़ा सा इशारा करते हैं कि आप बैठिएगा, और मालूम आवाज देता है बच्चों की मां, एक दीपक तो लाओ। अरे इतनी धूप, इतनी रोशनी, और ये दीपक काहे के लिए? पर ऐसा कोई प्रश्न मन में नहीं उठा जिसे ये कहा गया था। उसने धीरे से ला करके और पास में एक जलता हुआ दीप रख दिया। साधु जी ने कहा कि देखा युवक, उसने क्या इसमें देखने लायक था? अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे चले, एक टेकरी पड़ी, उस टेकरी पर नीचे से आवाज दी, इतनी ऊंची नहीं थी कि ऊपर तक आवाज ना पहुंचे, जोर से आवाज देने पर ऊपर तक पहुंच जाती थी। आवाज दी कि बाबा जी कैसे हैं? ऊपर से थोड़े से आगे बढ़ के बाबा जी ने झांका, ठीक हूं, कौन है भाई? अरे मैं हूं। बस बाबा जी, तो सुनिए तो बाबा जी। बाबा जी नीचे धीरे धीरे करके टेकरी से उतरने लगे, उतर करके नीचे आए, क्या पूछते हो? बाबा जी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ ठीक है बेटे, और कुछ पूछना? नहीं कुछ नहीं। बाबा जी पुनः ऊपर चढ़ गए सीढ़ी उस टेकरी पर, ऊपर तक पहुंचे उतने में फिर से नीचे से उस साधु ने आवाज दी, बाबा जी सुनो तो। बाबा जी फिर भी वैसे ही प्रसन्न, उतने ही आनंदित फिर लौट के आए, क्या पूछते हो बालक? यही कि आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र तो 94 बरस की। अच्छा बाबा जी। बाबा जी फिर से ऊपर चढ़े, ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर से आवाज दी, सुनो तो बाबा जी एक बात और पूछनी है, हम और आप होते तो क्या करते? हमारे अपने जीने का ढंग आप खुद निर्धारित कर लेना। वो बाबा जी उतने ही प्रसन्न चित्त फिर नीचे उतरे, क्या पूछते हो? ये पूछना था कि यहां इस टेकरी पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं तो जब 12 वर्ष का था तब से यहां आ गया हूं, तब से यहीं पर। अच्छा बाबा जी, बस हो गया। युवक से कहा कि चलो। युवक ने कहा कि क्या संदेश है मेरे लिए? बोले संदेश तो मैंने दे ही दिया, अगर गृहस्थी करना हो तो सदगृहस्थ जैसी करना कि जो धूप में भी अपनी जीवन साथी से जलता दीप मंगाता है तो बिना नू नच के और चुपचाप लाके दीपक धर देती है, ऐसा प्रेम अगर गृहस्थी में हो तो गृहस्थी करना, और साधु बनना हो तो ऐसे बनना कि 17 दफे कोई तकलीफ पहुंचाए पर मन की प्रसन्नता ना खो पाए, समता ना खो पावे और उधर संतोष ना चला जावे। बस दो ही चीजें हैं, बताइएगा जीने का ढंग हमने कौन सा निर्धारित किया है? इन दो में से ही तो एक हमें तय करना पड़ेगा। ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा जीने का ढंग अख्तियार करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसा जीता है उस व्यक्ति को मरण की चिंता नहीं है, क्योंकि रोज रोज हम मर रहे हैं। मरण कोई बहुत अलग चीज नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई अलग चीज है जो कि हमारे लाइफ से बिल्कुल सेपरेट है और हमें एक दिन आएगा जिस दिन मर जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो जितना जितना जीवन हम जी चुकते हैं उतने उतने समझिए क्योंकि हम मरण कर चुकते हैं। जीवन का बीतना ही मरण है, प्राणों के वियोग का नाम ही मरण है। और रोज हम अपने 10 प्राणों से जी रहे हैं, विशेष रूप से आयु प्राण जितने जितने हमारे कम होते चले जाते हैं उतने हम मरण के निकट होते हैं। तो मरण के बारे में भी हमें विशेष इतना ही जानना चाहिए कि मेरी जितनी सांस, एक जगह में पढ़ रहा था कि ये तो दिखता है कि मैंने एक सांस ली, पर ये नहीं दिखता है कि वो एक सांस और मेरे जीवन में से कम हो गई, मैं ले चुका। इतना यदि हमारा जीना सतर्कता से हो तो मरण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस जन्म और मरण के बीच एक ही चीज कि हमारा अपना प्रेम और घृणा में से क्या चुनाव है हमारा। जिसने जीने में संतोष और समता में से कोई एक चीज ली है वो तो प्रेम पूर्वक ही जिएगा, सबके प्रति उसके मन में एक निस्वार्थ एक पवित्र प्रेम ही रहेगा। लेकिन क्या करें, यहां हम जो अपने हैं उनको अपना मानते हैं, कुछ हैं जो कि हमारे हितैषी नहीं है उनको हम पराया मानते हैं, और ये गोरख धंधा जिसको कहते हैं वो निरंतर चलता है। और कोई बड़ा गोरख धंधा नहीं है, ये कमती नहीं है, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। मैं कई बार सोचता हूं कि जिसने थोड़ा सा मेरा हित किया वो मेरा अपना हो जाता है, जिसने मेरा थोड़ा अहित कर दिया वो मेरा पराया हो जाता है। अरे इसके अलावा कुछ और है इस संसार में कि नहीं है, ऐसा विचार हमारे अंदर आना चाहिए। ऐसा विचार आते ही और हमें लगेगा कि वास्तव में ना कोई अपना है ना कोई यहां पराया है, हम जैसा मान लें वैसा ही ये संसार है। हम जिसको अपना मान लेते हैं वो हमें अपने की तरह सुख देने लगता है, जिसे हम पराया मानने लेते हैं वो हमें पराये की तरह दुख देने लगता है। उस पराये को भी जिस दिन हम अपना मान लेते हैं वहीं से सुख मिलना शुरू हो जाता है, और इस अपने इसको जिस दिन हम पराया मानते हैं वहां से दुख मिलना शुरू। ऐसा हम हमेशा से करते आ रहे हैं, कभी हम अपने को पराया बनाते हैं कभी पराये को अपना बना लेते हैं। और क्या करते हैं, क्या कोई फिक्स है कि ये हमारे अपने हैं ये हमारे पराये हैं? ऐसा कोई पूरे जीवन के लिए और एक जीवन नहीं कई जीवन के लिए ऐसा कोई फिक्स है क्या? लेकिन नहीं होते हुए भी हम अपने अपने आप, कोई भी ऐसा किसी के जीवन में हो कि जब हम यहां आएंगे तो इतने लोग हमारे अपने होंगे इतने हमारे पराये होंगे, ऐसा है क्या? जन्म लेते ही साथ नहीं है। ये कौन निर्धारित करता है ये अपने और पराये को? क्या पहले से निर्धारित है? कोई कर्म निर्धारित करके भेजता, कोई ईश्वर निर्धारित करके भेजता है, या कि हमारे अपने परिणाम इसको निर्धारित करते हैं? हमारे प्रेम और हमारे घृणा के परिणाम ही हमारे संसार को निर्धारित करते हमारे अपने लिए। हम अपने संसार में जिस तरह से भी जीना चाहें उस तरह से जी सकते हैं। आज मेरा मन है कि आपको एक जो मेरे जीवन की दुर्लभ कहानी है वो सुनाओ। बहुत वर्षों के बाद, दिनों के बाद नहीं, बहुत वर्षों के बाद मन बना है। 96 के बाद 98 में और 98 के बाद 2001 में, और इसके पहले का याद नहीं मुझे मैंने कब वो कहानी सुनाई। जीवन हमारा किस तरह हम जीते हैं और रोज रोज अपने जीवन को जी करके सार्थक या निरर्थक करते चले जाते हैं ये हमें देखना चाहिए। और इतना यदि हमारे जीवन में हमने देखना शुरू कर दिया तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बने या हम अपने जीवन को अच्छा ना बना पाए। कोई हमारे जीवन को फिर बुरा बनाने के लिए कितना भी उद्यम क्यों ना करे वो बुरा नहीं बना पाएगा यदि हमने एक बार इस चीज को ठीक से समझ लिया। एक बहुत बूढ़ा पुराना पेड़ था जो उसके नीचे से निकलता था उसे वो शीतलता देता था, छाया देता था, एक बार ऐसा हुआ कि उस पेड़ के ही पास एक गृहस्थ ने आकर अपनी झोपड़ी बना ली। पेड़ ने कुछ नहीं कहा। हम और आपके बाजू में अगर कोई अपनी झोपड़ी बनाए तो हमें कितना विचार करना पड़ता है, लेकिन पेड़ को कोई विचार नहीं करना था। बना ली झोपड़ी तो बनाओ, और उसमें एक दिन देखा कि अभी अभी जिसने चलना शुरू किया है, अभी थोड़ा घुटनों के बल चलता है, थोड़ा पैरों पे खड़े होकर कुछ दूर चल लेता है, एक छोटा सा जीव। पेड़ ने देखा कि वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। पेड़ को बहुत खुशी हुई। जब थोड़े से अपन बड़े हो जाते हैं तब अपने से कोई छोटा हो वो अपने निकट आए तो ऐसी खुशी अपन को होती कि नहीं होती? छोटे से के प्रति अपने मन में कभी अपने और पराये का ज्यादा भेद नहीं रहता, इसलिए खुशी होती है। किसी का भी बेटा हो, छोटा सा है, सबको प्यारा मालूम। ये तो बाद में है, जिसके भीतर जितना राग द्वेष बढ़ता चला जाता है वो सामने वाले के अंदर भी उतना ही राग द्वेष पैदा करता है। हाँ, और जो व्यक्ति जितना निर्मल है उसके निकट बैठ करके व्यक्ति के भीतर भी उतनी ही निर्मलताएं घटित होने लगती ऑटोमेटिकली। ये हम पे निर्भर है कि हमारे भीतर कितना राग द्वेष है। जितना कम होगा उतना हम महसूस करेंगे कि हम बहुत खुश हैं, और वो वृक्ष बहुत खुश होता है जबकि वो एक छोटा सा बेटा आ रहा है उसकी तरफ। कुछ दिन में तो बड़ा हो जाता है, उसी पेड़ के आसपास खेलने लगता है। पेड़ को बहुत खुशी होती है। वो कभी कभी पेड़ के तने से लिपट जाता है, तब तो पेड़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। एक संबंध निर्मित हो रहा है। इस जन्म और मरण के बीच कौन सा संबंध है? प्रेम का संबंध या कि घृणा का संबंध? आने वाली है दिवाली, भरेंगे लोग दीप, तेल डालेंगे। मैं तो कहता हूं तेल तो बहुत बाहरी है, क्या डालना है ये हम पे निर्भर करता है। घृणा का तेल भरना है या कि प्रेम का तेल भरना उस दीपक में? वैसी रोशनी होगी, वैसी ही रोशनी होगी जैसा हम उसमें तेल डालेंगे। ऐसे ही हमारे अपने जीवन में हम जिस तरह का भाव करेंगे वैसा ही हमें जीवन दिखाई पड़ेगा अपने आसपास, वैसा ही हमारा संसार निर्मित होगा। और वो बच्चा बड़ा होकर के खेलने लगा। अब तो एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब वो पेड़ के पास ना आए, और अगर किसी दिन थोड़ा सा लेट हो जाए तो पेड़ को लगता था कि आज क्यों नहीं आया। पेड़ का एक एक पत्ता जैसे कि पुकारता हो उसे, पेड़ ने उसे अपना मित्र मान लिया था। आओ मित्र, और निरंतर उसके अंदर एक ही पुकार उठती थी कि ये मेरा मित्र है, आएगा मेरे पास। और कौन सा सुख है? इतना ही कि मेरे पास आएगा, इतना ही सुख है, और कुछ नहीं चाहिए। और धीरे धीरे करके वो बेटा बड़ा होता चला गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ और बहुत से काम आ गए उसके, अब पेड़ के पास ज्यादा समय नहीं गुजारता था, वो थोड़ी देर ही गुजारता। लेकिन पेड़ इसके बावजूद भी खुश था कि जितनी देर को आया आया तो मेरा मित्र है। मैं इसके लिए क्या करूं? मैं इसे क्षाया दे सकता हूं, मेरे क्षाया में शीतलता भी है, इसे शीतलता दे सकता हूं। मेरे वृक्ष मेरे ऊपर लगे हुए फल ये खाए, फूलों से खेले, बस इतना ही उसके मन में था। क्या ऐसा हमारा जीवन हो पाता है? इसको पूरा अपने जीवन पर अपन घटित करते देखते चले जाएं कि अगर वास्तव में जन्म और मरण के बीच जीने का ढंग है तो क्या ये ढंग हमारा हो सकता है? हम ऐसा बना सकते हैं? और जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा तो उसका आना कम हो गया, कई कई दिन तक नहीं आता था। जब आता था तो पेड़ पूछता था कि क्यों नहीं आते इतने दिन बाद आए, तो वो हंस करके टाल देता था कि क्या करूंगा, मुझे और बहुत सारे काम हैं। पेड़ भी सोचता था कि हां सचमुच इसे बहुत और काम होंगे, लेकिन देखो हमारे जब काम होते हैं इस संसार में जिससे बनते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, जब हमारे अपने कोई काम नहीं बनते हैं तो हम उन संबंधों को कहां निर्वाह करते हैं। अगर सचमुच हमारे भीतर हमारा अपना जीने का प्रेम से भरा हुआ ढंग है तो क्या हम इन सब का ध्यान नहीं रखेंगे। उस बेटे ने अब उस वृक्ष का ध्यान रखना बंद कर दिया कि उसके पहुंचने से उसे सुख होता होगा, ये बात वो भूल गया। पेड़ को सिर्फ इतना ही सुख था कि वो बेटा वो मेरे पास आए बस, और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मेरे से उसे कुछ मदद मिल सके तो मैं तैयार हूं। ऐसे थोड़े बहुत रिश्ते हैं अपने जीवन में, मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे रिश्ते अपने जीवन में अपन ने बनाए हो, ऐसा जीवन जीने का ढंग अपन ने अख्तियार किया हो कि जहां हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते बल्कि हम सब कुछ अपना देने के लिए तैयार होते हैं। और एक दिन बहुत बहुत इंतजार के बाद जब वो बेटा आया तो पेड़ ने कहा कि क्यों नहीं आए इतने दिन से, आओ मित्र आते क्यों नहीं हो। तो उसने कहा क्या करूंगा तुम्हारे पास आकर, तुम मुझे दे क्या सकते हो। वो अपना मित्र मान रहा है और सामने वाला सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहा है। हम लोगों के साथ भी शायद यही है, हम लोगों के जीवन में भी अब इतना ही शेष रह गया है कि हमारा स्वार्थ सत्ता है और उस स्वार्थ के चलते हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और निस्वार्थ होकर के कोई क्षण हमारे जीवन का बीतता हो ऐसा हमें शायद कभी ध्यान ही नहीं आता, या बिताना है इस तरह का हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं आता। आता है क्या एक आध क्षण दिन भर में जहां कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम मिलते हैं लोगों से नहीं मिलते हैं, हम किसी का कुछ उपकार करते हैं बिना किसी स्वार्थ के नहीं कर पाते हैं। हम अपने जिनको अपना मानते हैं, जिनको हम अपने सगे भाई मानते हैं, सगे बहन मानते हैं, सगी माँ और पिता मानते हैं, जो हमारे अपने सगे कहलाते हैं, हमारे निकट के हैं, उनके बीच भी देखना ईमानदारी से कि वे संबंध भी हमारे बन गए हैं क्योंकि हम मजबूर थे कि इसको हमारा भाई होना पड़ेगा और ये हमारी माँ है और ये हमारे पिता, हमारी अपनी च्वाइस नहीं है, इसमें अपनी च्वाइस नहीं लगा सकते कि ये भाई हमारा होगा और ये बहन हमारी होगी। हम उनके साथ किस तरह जीते हैं, मैं बहुत बहुत बड़ी बात करने के मूड में कभी नहीं रहता, आत्मा वात्मा की बहुत बड़ी बात है मुझे आती वाती भी नहीं है। हाँ मैं ये भर जानता हूँ कि आत्मा का जानने देखने का स्वभाव है, पर अभी आत्मा अपने उस जानने देखने के स्वभाव को भूलकर इस प्रपंच में पड़ी है इतना तो जानता हूँ, पर उस प्रपंच को ठीक से कोई जान ले तो उस प्रपंच से बाहर हो सकता है। अकेले आत्मा के गीत गाने से आत्मा प्राप्त होती होती तो अपन तो एक दो ठो ले लेते हाथ में, वो दिन भर वही करते तो हो जाती प्राप्त। मुझे कई बार ऐसा बोलते बोलते ऐसा लगने लगता है कि आपको ये तो नहीं लग रहा होगा कि बहुत सांसारिक सी चीज बता रहा हूं, कोई बहुत विशेष सी बात तो है नहीं। क्या हुआ कि उसने मालूम क्या कहा कि तुम्हारे पास आकर के करूं क्या, किस बात के लिए आऊं। पेड़ को भी लगा कि हाँ ठीक तो कह रहा है, मेरे पास है क्या जो इसे मैं दे सकता हूं जिसके लिए ये मेरे पास आए। पर उसे अचानक ख्याल आया कि नहीं नहीं मेरे में तो फल लगने वाले हैं, सुनो ये जो जितने फल लगे हैं तुम इनको उतार कर ले जाओ, इनको बाजार में बेचोगे तो तुम्हें कुछ तो मिल जाएगा। उसने कहा अरे वाह ये तो ध्यान ही नहीं आया, और एक एक करके शुरू हो गया फलों का उतारना और बेचना। कई दिन तक चला, वृक्ष खुश है कि कम से कम इस बहाने मेरा मित्र रोज आता तो है। हम और आप होते तो क्या कहते, अपने स्वार्थ से आओ तो हमारे पास हमेशा आओ तो का। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कम से कम आया तो मैं कुछ उसके लिए दे तो पाया, और एक दिन फिर आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि पेड़ पर सारे फल उतारे जा चुके थे, खत्म हो चुके थे। पेड़ ने सोचा ठीक ही तो है, अब क्यों आएगा वो। लेकिन उस बेटे ने कभी नहीं सोचा कि जिसने मेरे ऊपर इतना उपकार किया उसके पास दिन भर में एक बार जाना तो चाहिए। कोई नहीं सोचता। और जबकि हम पूरे दिन जीने के लिए किस किस का उपकार लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको फील नहीं करते, कभी हम कृतज्ञ नहीं होते। हमारी सांस भी शायद किसी का उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास, सब जो है हमारे ऊपर, बहुत बहुत हाथ है हमारे अपने जीवन में जिनसे हम जी रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलाइज ही नहीं करते, ऐसा फील ही नहीं करते। वो पेड़ फिर भी कहता है कि आओ आओ मित्र, तुम आते क्यों नहीं हो। एक दिन वहां से वो गुजरता है तो उसके उसके कदमों की आवाज से वो समझ जाता है कि मेरा मित्र गुजर रहा है। वो वहीं से आवाज देता है कि आओ मित्र, कहां जा रहे हो, आते क्यों नहीं। उसने कहा क्या है तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए। कितना स्वार्थी है मनुष्य जो अपने उपकारी से भी यही कहता है कि अब क्या है तुम्हारे पास शेष मेरे लिए देने को। हम और आप भी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने जीवन में ऐसा ही कर रहे हैं, जिससे जितना बन रहा है वो दूसरे से उतना छीनने की कोशिश में है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला नहीं समझता, सामने वाला भी समझता है, और वो भी उसी फिराक में है कि मैं इससे कैसे अपना स्वार्थ साधूं। और इस तरह हमारा जीवन हम जीते जाते हैं। ये जीवन जीने का स्टाइल हमें कभी निर्मलता में नहीं ले जाएगा, ये ध्यान रखना, कभी हमें निर्मल नहीं बना पाएगा। हम जो कह रहे हैं कि हम पूजा कर लेते हैं, हम अभिषेक कर लेते हैं और हम आहार दे लेते हैं और हम बहुत से व्रत नियम का निर्वाह कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे जीवन को निर्मल बनाने के लिए हैं, लेकिन इनके साथ अगर ये चीज नहीं है तो शायद ये जो चीजें हम दोहराते हैं वे भी हमारे जीवन को, जो कि निर्मल बनाने वाली, वे भी नहीं निर्मल बना पाएंगे। उन सबको भी हम निस्वार्थ भाव से, जितना निस्वार्थ भाव से करेंगे उतनी ही ये चीजें हमारे जीवन को निर्मल बनाएंगे। यानी एक ही चीज है निस्वार्थ, हमारे अपने जीवन का जीने का ढंग। आवाज दी उसने, आया वो, आते क्यों नहीं हो। वही कि क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास सचमुच मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनो लेकिन ऐसा करो, ये जो शाखाएं हैं मेरी, कुछ कुछ तो सूख चली हैं, और अगर इनको तुम काट दोगे तो कुछ दिन में ये सूख जाएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। वो युवक जो छोटा सा बेटा था अब युवक हो गया, वो सोचता हाँ ये बात तो सही है, मुझे मकान भी बनाना है और उसके लिए तो ये सब काम आएंगे। और उस दिन से फिर उसका आना शुरू हो जाता है। वृक्ष इसलिए खुश है, वो काटा जा रहा है इसलिए दुखी नहीं है, वो इसलिए खुश है कि अब रोज उसका मित्र उसके पास आता तो है। किस तरह का सोच रहा होगा, या तो कहानी लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया होगा, लेकिन उस लिखने वाले का भी कैसा सोच रहा होगा। बहुत प्यारा सोच तो रहा, इसमें कोई शक नहीं, उस वृक्ष का जैसा रहा हो सो रहा हो, पर जिसने ऐसी कल्पना की है उसकी वो कल्पना भी बहुत सुख देती है कि हाँ ऐसा हमारा जीवन बन सकता है। कोई हमें यहां पर लूट रहा है, कोई हमें चीट कर रहा है, कोई हमें ब्लफ दे रहा है, कोई हमें हमारे जीवन को तहस नहस कर रहा है, इसके बावजूद भी हमारा हमारा मन का भाव मलिन नहीं हुआ है। ये क्या चीज है, ये आती कैसे होगी। आती तो होगी जब तो ऐसा लिखा है, अब हमारे जीवन में नहीं आ पा रहे ये बात जुदी है। करेंगे लेकिन हम प्रयास करेंगे इस चीज का, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। मलिनता हमारा स्वभाव है, निर्मलता हमारा स्वभाव है। जब जब हम मलिन हो जाएं तो ये बात ध्यान में आए कि ये जो मेरे अंदर स्वार्थ की मलिनता आई है वो मेरा अपना निजी नहीं है, वो कहीं बाहर से आई, मुझे इसे हटा देना है। और रोज रोज उसमें से लकड़ी काटी जा रही है, क्या रह गया शेष? एक तना रह गया है, बाकी सब शाखाएं तो निकाल ली गई हैं। और ले जा रहा है, ले जाने वाला इसलिए खुश है कि उसे इतना मिल गया, और अपनी सारी क्षति होते देख करके भी वो इसलिए खुश है कि वो अपने मित्र के काम आ सका। और क्या शेष रहा? एक ठूंठ शेष रहा, यहां तक उसे काट लिया गया। इसके बाद भी वो प्रसन्न है, पर इसके बाद उसकी प्रसन्नता थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब उस मित्र ने आना बंद कर दिया। अब क्या रहा शेष? एक ठूंठ है, और कुछ तो शेष रहा नहीं। क्या करे, कैसे बुलाए? वो रोज बुलाता था, ठूंठ होने के बावजूद भी बुलाता था कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं? पर कौन उसकी आवाज सुने? मनुष्य हो तो मनुष्यता की आवाज सुन सकता है, और मनुष्य ना हो तो मनुष्यता की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। कोई ने नहीं सुनी आवाज, उस मित्र ने तो नहीं सुनी आवाज। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में उसे पगचाप सुनाई पड़ी अपने मित्र की, तो वो ठूंठ होने के बाद भी बहुत खुश हुआ कि आता है मेरा मित्र, मेरे पास आ रहा है। जिसने उसे पूरा तहस नहस कर दिया, उसके बारे में भी उसके मन में यही विचार है कि आता है मेरा मित्र, आता। आवाज तो उसी के कदमों की है, वहां से गुजर रहा है। आवाज दी उसने कि ठहरो मित्र, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो। वो कहता कि क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? मैं दूर देश की यात्रा करने जा रहा हूं, मैं एक नाव चाहता हूं, है तुम्हारे पास? वृक्ष कहता है कि नाव तो मेरे पास नहीं है, लेकिन देखते हो थोड़ा तो अभी मुझ में कुछ थोड़ा तो शेष है, इससे शायद तुम्हारी नाव बन जाए। और कहते हैं कि उस ठूंठ को भी उसने काट करके अपनी नाव बनाई। लेकिन जब तक वो नाव बनाता रहा, तब तक उसके पास रहा, इस बात की खुशी उसे बनी रही। एक दिन विदेश की यात्रा के लिए जब नाव तैयार हो गई तो अपने मित्र को विदा कर दिया, लेकिन रोज क्या भावना भाता था कि मेरे जीते जी और यात्रा से मेरा मित्र वापस लौट आए, किसी दिन तो आएगा। और उसकी सांस अटकी हुई है, और एक दिन मित्र वापस लौट करके आता है, उसी रास्ते से अपने घर लौटने लगता है, तो पगचाप फिर सुनाई पड़ती है, रोक लेता है वो, ठहरो मित्र, लौट के आ गए क्या? जो गुजरता था रास्ते से उससे उसका कहने का मन होता था उस कटे हुए वृक्ष का कि कहीं देश विदेश की यात्रा पर गए मेरे मित्र को कुछ हो तो नहीं गया। रोज वो दुआ देता था कि वापस लौट के आए, और आज वापस लौट के आए तो उसे आवाज देता है कि मित्र आओ बैठो। अंधेरी रात में कौन उस ठूंठ के नीचे बैठना पसंद करेगा? लेकिन मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और क्या दे सकता हूं। कुछ समझ में नहीं आया उसे, जब वो जाने लगा तो उसने कहा, सुनो ऐसा करो, ठंड तो बहुत है, रात भी बहुत घनी है, अगर तुम्हारे पास माचिस की काड़ी हो तो थोड़ा सा और मेरा जीवन शेष रहा, लेकिन तुम्हारी रात आसानी से कट जाएगी। और कहते हैं कि उस युवक ने, जो कि वृद्ध हो गया था, ये तक नहीं सोचा कि दो बोल प्यार के तो कह देता कि तुमने मेरे लिए जीवन भर इतना दिया, अब मैं तुम्हें आग लगाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। ये ना कह के एक माचिस की काड़ी पर्याप्त थी, और वो वृक्ष जो थोड़ा शेष रहा था जलने लगा। लेकिन इसके बाद भी वो खुश था कि उसने अपने मित्र के लिए कुछ दे पाया। मुझे आपसे और विशेष कुछ नहीं कहना, इतने दिनों मैं आपसे कहते ही तो रहा हूं, और यही कहना है मुझे कि जैसे बने भैया वैसे अपने जीवन को और इन सब कही सुनी बातों से निर्मल बनाने की कोशिश करना। निर्मलता हमारा अपना स्वभाव है, मलिनताएं जब जब भी हमें घेर लें तो हम भयभीत ना हो बल्कि उन मलिनताओं से जूझ करके और अपनी निर्मलता को बनाए रखें। सबके प्रति हमारे मन में ऐसी ही प्रीति, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही करुणा अगर धीरे धीरे उमड़ने लगे तो हमारा जीवन निर्मल हुए बिना नहीं रहेगा। इसी भावना के साथ कि हम सबके भीतर ऐसे भाव, ऐसी निर्मलता आवे, अपन नमोकार करते हैं। नमो अरिहंताणं ॐ नमो
शरणं पर्वजामि। केवली पन्नतम धनम शरणम प्रव्रजामि। धम्मम शरणम प्रव्रजामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो पापा पर भास वेखो भानु शिव कानी है। सहु द्रव्य जान वेखो बंद वेद भान वेखो सफर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो जीवों के जताए देखो काबू न सताए देखो भव्य और यानी है। यहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो यही जीन वाणी है। जावानी के ज्ञान पे सूझे लो कालो मस्तक नमो सदा दे तो हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेण जो ते रो शरणा गए तो पावे।